पृष्ठ संख्या 13, लैटिन अमेरिका। अधिकतर लैटिन अमेरिकी देशों में बड़े जमींदारों तथा सेना के प्रभुत्व वाले शासन कायम रहे, लेकिन इनमें से लगभग हर देश में लोकतांत्रिक तथा वामपंथी आंदोलन एवं श्रमिकों और किसानों के संगठनों की शक्ति बढ़ी। ज्यादातर लैटिन अमेरिकी देशों में इस काल में साम्यवादी दल भी स्थापित किए गए। ऑगस्टो सीजर सैंडिनो के नेतृत्व में निकारागुआ की कठपुतली सरकार के विरुद्ध, जिसे संयुक्त राज्य की सेना ने सत्तासीन किया था, जनविद्रोह भड़क उठा। यह विद्रोह कई वर्षों तक चलता रहा और 1933 में संयुक्त राज्य ने वहां से अपनी सेना वापस बुला ली, लेकिन सैंडिनो की हत्या कर दी गई और अनास्तासियो सोमोजा सत्ता हथियाकर निकारागुआ का अधिनायक बन बैठा। सैंडिनो के नेतृत्व में चलने वाले जन विद्रोह को सभी लैटिन अमेरिकी देशों की जनता का समर्थन और सहानुभूति प्राप्त था, और इसके फलस्वरूप लैटिन अमेरिकी देशों में हस्तक्षेप करने के लिए अपनी सेना को भेजने की अमेरिकी नीति में भी बदलाव आ गया। 1929 के आर्थिक संकट ने सभी लैटिन अमेरिकी देशों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया था। इनमें से अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था निर्यात पर निर्भर थी, और जब संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अन्य देशों ने अपने यहाँ आयात का सख्त पाबंदी लगा दी, तो लैटिन अमेरिकी देश भारी आर्थिक संकट में पड़ गए। वहाँ के उद्योगों में भारी बेरोजगारी फैल गई। खेतीबाड़ी करने वाले लोगों पर तो इसका और भी बुरा असर पड़ा, जबकि इन देशों की आबादी में वे भारी संख्या में थे। मैक्सिको। दो युद्धों के बीच के काल में मैक्सिको में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। मैक्सिको लैटिन अमेरिका के उन पहले देशों में से था जिन्होंने स्वयं को संयुक्त राज्य से स्वतंत्र घोषित किया था और किसानों के लिए हितकारी नीतियां अपनाई थी। वह सोवियत संघ से राजनीतिक संबंध स्थापित करने वाला पहला अमेरिकी देश था। 1934 से 1940 तक लजानरो कार्डेनास मैक्सिको का राष्ट्रपति बना। उसने बड़े जमींदारों की सत्ता समाप्त करने और लोक हितकारी अर्थव्यवस्था की रचना करने के लिए कई आमूल परिवर्तनवादी कदम उठाए। बहुत सी जमींदारियों की जमीनें छीन कर किसानों में बांट दी गई। उसने रेल मार्गों और कुछ अन्य उद्योगों का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया। अंत में पूरे तेल उद्योग का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जो कि अंत तक अमेरिकी कंपनियों की मिल्कियत में था। तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण एक दूरगामी महत्व का कदम था, क्योंकि इसका मतलब देश की जनता द्वारा अपने देश की संपदा तथा संसाधन पर अपना खुद का नियंत्रण स्थापित कर लेना था। कालांतर में मैक्सिको के उदाहरण का अनुकरण कई अन्य लैटिन अमेरिकी देशों ने भी किया। संयुक्त राज्य की नीति में परिवर्तन। इस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता लैटिन अमेरिकी देशों द्वारा विदेशी हस्तक्षेप से मुक्त होने का आग्रह तथा विश्व रंगमंच पर अपनी स्वतंत्र भूमिका निभाने की ललक थी। उनके राष्ट्र संघ में शामिल होने के पीछे यह एक बड़ा मकसद था। अखिल अमेरिकी साम्राज्यवाद विरोधी संघ, ऑल अमेरिकन एंटी इंपीरियलिज्म लीग नामक एक संगठन की स्थापना की गई। उसके प्रतिनिधियों ने 1927 के ब्रुसेल्स सम्मेलन में भाग लिया, जहां साम्राज्यवाद विरोधी संघ लीग अगेंस्ट इंपीरियलिज्म की स्थापना की गई। संयुक्त राज्य की पहल पर एक अखिल अमेरिकी संघ पैन अमेरिकी यूनियन की स्थापना की गई थी, जिसमें संयुक्त राज्य का ही बोलबाला था। संयुक्त राज्य के इस प्रभुत्व का विरोध करने के लिए सभी लैटिन अमेरिकी देश एक हो गए। उन्होंने संयुक्त राज्य के इस दावे का भी विरोध किया कि उसे दोनों अमेरिकी महाद्वीपों के देशों के मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। अखिल अमेरिकी संघ के एक सम्मेलन में 1933 में संयुक्त राज्य को इस घोषणा का समर्थन प्रदान करने के लिए विधिवत वचन देना पड़ा कि किसी भी राज्य को किसी दूसरे राज्य के आंतरिक या वैदेशिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। लैटिन अमेरिका के प्रति संयुक्त राज्य की नीति में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। 1920 वाले दशक से वह लैटिन अमेरिकी देशों में सीधे सैनिक हस्तक्षेप करने की बजाय डॉलर कूटनीति पर अधिक निर्भर करने लगा, जिसका मतलब था कि लैटिन अमेरिकी देशों में अपने निवेश बढ़ाकर उनकी अर्थव्यवस्था पर अपना नियंत्रण स्थापित करना। निकारागुआ से संयुक्त राज्य की सेना की वापसी का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के राष्ट्रपतित्व काल में लैटिन अमेरिकी देशों के प्रति संयुक्त राज्य की नीति को अच्छे पड़ोसी की नीति कहा गया है। कुछ मामलों में संयुक्त राज्य की नीति में आए परिवर्तन महत्वपूर्ण थे। संयुक्त राज्य ने फ्लैट संशोधन नामक उस व्यवस्था को रद्द कर दिया, जिसके अधीन उसने क्यूबा में अपनी सेना भेजने का अधिकार अपने आप को ही सौंप डाला था। उसने पनामा नहर क्षेत्र को छोड़कर बाकी पनामा से अपनी सेना वापस बुला ली, लेकिन इन कार्रवाइयों से लैटिन अमेरिका पर संयुक्त राज्य के प्रभुत्व का अंत नहीं हुआ और आगे के वर्षों के दौरान अहस्तक्षेप की नीति का पालन नहीं किया गया। यूरोप में फांसीवाद के उदय के बाद कुछ लैटिन अमेरिकी देशों में भी फांसीवाद मंडलियां और दल स्थापित किए जाने लगे। इनमें से कई देशों में जर्मनी, इटली और स्पेन से आकर बहुत से लोग बस गए थे, लेकिन लैटिन अमेरिका का देश फांसीवाद के खतरे के प्रति सजग हो उठे और फांसीवादी मंडलियों तथा दलों की गतिविधियों को रोकने के लिए संयुक्त मोर्चे बनाने की कोशिश की गई। उन्होंने फांसीवादी देशों तथा जापान की आक्रामक कार्रवाइयों की निंदा की। मैक्सिको लगातार फांसीवाद विरोधी नीति का अनुसरण करता रहा। उसने मंचूरिया में जापानी अतिक्रमण की, इथियोपिया पर इटली के आक्रमण तथा कब्जे की और जर्मनी द्वारा ऑस्ट्रिया को अपने साम्राज्य में मिलाए जाने की कार्रवाइयों की भर्त्सना की। उसने उन हजारों स्पेनी गणतंत्रवादियों को शरण दी जिन्हें इटली तथा जर्मनी के समर्थन में फ्रैंको द्वारा स्पेनी गणतंत्र के समाप्त कर दिए जाने के बाद स्वदेश छोड़कर भागना पड़ रहा था।